जयपुरमा पूज्य भाईश्रीनी तत्व चर्चा।
एक भाई ने प्रश्न किया है, उनके प्रश्न से मालूम पड़ता है कि वो पहली बार यहाँ पधारे हैं। पहली बार आया है कोई भाई, उसने पूछा है कि आपने जो 6 महीने का कोर्स बताया है वो प्रतिदिन किस प्रकार, कैसे और कितना समय रोजाना होना चाहिए। जब तक ये मालूम नहीं होगा तो कोई भी प्रयोग नहीं कर सकेगा, इसलिए 6 महीने का प्रयोग को रोज के हिसाब से कैसे करना ये बताने की कृपा करें।
कम से कम 1 घंटे करना चाहिए, ज्यादा हो तो बहुत अच्छा, बाकी कम से कम 1 घंटा करना चाहिए। और जो निवृत्ति हो इसको इसको 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा करना चाहिए, प्रवृत्ति वाला हो तो 1 घंटा करना चाहिए।
एक प्रश्न है कि स्वार्थ व परात्मा का स्वरूप क्या है?
क्या
स्वार्थ प्रमाण एवं परात्मा का स्वरूप क्या है? स्वार्थ प्रमाण,
हाँ, स्वार्थ प्रमाण परार्थ प्रमाण। अच्छा, स्वार्थ प्रमाण में अंदर में अपना धर्मों के जानना वो प्रमाण है, परमार्थ में परार्थ में बार मान सौ पर आ गया। अंदर में अपना गुणों अपना धर्म अपनी पर्याय और स्वार्थ में आता है और वो अध्यात्म प्रमाण है, बार का परार्थ प्रमाण है। आत्मा को भी जाने, लोकालोक को भी जाने, पर का देवगुण पर्याय जाने, ऐसा।
उसी के उपरांत इसमें दूसरा प्रश्न है, तो नयों का भेद स्वार्थ प्रमाण में होता है या परार्थ प्रमाण में?
नयों का
नए स्वार्थ प्रमाण में लागू पड़ेगा कि परार्थ प्रमाण में?
नहीं तो दोनों में लागू पड़ती है।
दोनों में किस तरह लागू पड़ती
है? अंदर का स्वपर प्रकाशक और बाहर का स्वपर प्रकाशक।
हाँ जी,
अंदर का स्वपर प्रकाशक में अपना द्रव्य अपना गुण अपना पर्याय, अंदर के बाहर, और बाहर में प्रमाण से बाहर लोकालोक भी जानने में आता है, ऐसा।
लोकालोक को जानना ये भी प्रमाण में आ जाएगा क्या?
हाँ, प्रमाण में आ जाता है, जनित जाता है तो जानता है, ऐसा कहा जाता है। एक ख्याल रखना,
हाँ जी,
निश्चय जो ख्याल में से छूट गया तो लक्ष्य लोकालोक पर चले जाएगा, पर चले जाएगा तो नई प्रगट नहीं होगा, स्वपर प्रकाशक ही प्रगट नहीं होगा, स्वप्रकाशक होगा 1 नंबर 1। तो अंदर का स्वपर प्रकाशक निश्चय प्रकट होता है, और अंदर का स्वपर प्रकाशक होता है तो बाहर का भी स्वपर प्रकाशक होता है, ऐसा 3 बार ज्ञानी के ज्ञान में आता है।
अंदर का स्वपर प्रकाशक और बाहर का स्वपर प्रकाशक, ये क्या चीज?
अंदर का स्वपर प्रकाशक का ऐसा विषय है कि अपना आत्मा ज्ञायक भी जानने में आवे, और आनंद आदि जो परिणाम प्रकट हो वो भी जानने में आवे। तो जब ज्ञान अपेक्षा से देखो तो ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना, और ज्ञान ने आनंद आदि परिणाम जो प्रकट हुआ अनुभव के काल में उसको भी जाना। तो ज्ञान स्व है, आनंद पर है, तो ऐसा स्वपर प्रकाशक अनुभूति के काल में प्रकट होता है, निश्चय स्वपर प्रकाशक कहा जाता है। और वो सविकल दशा में आते हैं साधक, तो आत्मा भी जानने में आता है, देवगुरु शास्त्र सब लोकालोक भी जानने में आता है, ये स्वपर प्रकाशक है। वो भी एक निश्चय, दूसरा व्यवहार। निश्चय क्या है कि पर की अपेक्षा नहीं है, इसलिए स्वपर प्रकाशक निश्चय। बाहर की पर की अपेक्षा आता है तो ऊपर प्रकाशक स्वपर प्रकाशक व्यवहार हो गया, एक निश्चय दूसरा व्यवहार ऐसा होता।
तो व्यवहार स्वपर प्रकाशक से तो ये सिद्ध होगा कि आत्मा पर को जानता है, नहीं तो व्यवहार स्वपर प्रकाशक कैसे बनेंगे?
पर पदार्थ जनित जाता है दर्पण में आए हुए प्रतिभास के समान, तो कहा जाता है कि पर को जानता है, ऐसा प्रवचनसार में ऐसी बात आई है कि जो पर पदार्थ ग्रह है वो निमित्त भूत ज्ञेयाकार ज्ञान है, अने ओ ज्ञेयो ज्ञान में प्रतिभास होता है, उसका नाम निमित्त भूत ज्ञेयाकार ज्ञान है। तो नैमित्तिक भूत ज्ञाकार ज्ञान का प्रतिभास तो ज्ञान की पर्याय है, उसको जाना तो कार्य में कारण का आरोप देकर लोकालोक को जानता है, ऐसा कहा जाता
है। निमित्त भूत ज्ञाकार और नैमित्तिक भूत ज्ञाकार, इन दोनों को थोड़ा विशेष खुलासा करें।
नैमित्तिक भूत ज्ञाकार तो जैसे दर्पण, दर्पण का दृष्टांत दो, ख्याल में आवे, दर्पण में प्रतिभास के अंदर अग्नि हो, बर्फ हो, मोर हो, कोई भी पदार्थ हो, तो वो निमित्त भूत ज्ञाकार है। निमित्त भूत ज्ञाकार ज्ञान से भिन्न है, वो निमित्त मान चलेगा। और ये जो इसका प्रतिभास हुआ उसका नाम नैमित्तिक भूत ज्ञाकार ज्ञान है, तो आत्मस्थित है, सब आत्मा में है, तो कार्य के अंदर कारण का उपचार देकर लोकालोक को जानता है, ऐसा कहा जाता है। जानता है तो अपने पर्याय निमित्त भूत मोर है, हाँ यह अखबार है, इसी स्वच्छता है दर्पण में, ऐसा आत्मा में ज्ञान के अंदर रखता है तो प्रतिभास होता है।
क्या गे पदार्थों को निमित्त भूत ज्ञाकार कहते हैं?
हाँ, गे पदार्थों को अपने आत्मा भी गे, अपना आत्मा के अलावा जो भिन्न है आत्मा से वो ज्ञाकार है, वो गे है, निमित्त भूत गे है, ये निमित्त भूत गे है।
हाँ जी,
और इसका झलक अंदर में आया तो नैमित्त भूत ज्ञाकार ज्ञान हो गया, वो निमित्त नैमित्त ऐसा
ये रूप।
ये प्रवचन सार शास्त्र है, देखो मंगवन जरा अभी प्रवचन शास्त्र लाओ।
आज तो मेरे प्रवचन में भी इस प्रकार की बात आई थी कि निमित्त को भी नहीं जानता, निमित्त को भी नहीं जानता, क्षणिक उपादान को जानता है तो उससे अभेत्रकाली उपादान को जान लेता है, इस बात को जरा विशेष खुलासा करने की कृपा कर।
ठीक है, समस्त स्वज्ञाकारों के समर्पण द्वारा अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञान में प्रतिभास न हो तो ज्ञान में आता नहीं है, प्रतिभास तो होता है, प्रतिभास न हो तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं मानना जाता है, यानी प्रतिभास तो होता है। और यदि यह ज्ञान सर्वगत माना जाए तो फिर पदार्थ साक्षात ज्ञान दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति अपने अपने ग्रियाकारों के कारण होने से अपने अपने वो कारण कार्य उसमें है ये का, अपने अपने ग्रियाकारों के कारण होने से और परंपरा से प्रतिबिंब के समान ग्रियाकारों के कारण होने से पदार्थ कैसे ज्ञान निश्चित नहीं होते? अवश्य ही ज्ञान से निश्चित होते हैं, उसमें एक नीचे फुटनोट है, पदार्थ साक्षात स्वज्ञाकारों के कारण है, अर्थात पदार्थ अपने अपने द्रव्यों पर्यायों के साक्षात कारण है बात, और परंपरा से ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञाकारों के ज्ञानाकारों के उपकार है, प्रतिबिंब नैमित्त कार्य है और मयूरादि निमित्त कारण है, एक निमित्त अनेक स्वच्छता में जिसका गुजराती में बहुत भावार्थ है, बहुत लिखा है इसमें भावार्थ भरा है, भावार्थ दर्पण में, दर्पण का दृष्टांत बहुत अच्छा है, दर्पण में मयूर मंदिर सूर्य वृक्ष इत्यादि के प्रतिबिंब पड़ते हैं, वहां निश्चय से तो प्रतिबिंब दर्पण की ही अवस्था है, तथापि दर्पण में प्रतिबिंब देखकर कार्य में कारण का उपचार करके व्यवहार से यह कहा जाता है कि मऊ आदि दर्पण में हूं। इसी प्रकार ज्ञान दर्पण में भी सर्व पदार्थों के समस्त ज्ञाकारों के प्रतिबिंब पड़ते हैं, ज्ञान नहीं आता है ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ते हैं, अर्थात पदार्थों के ज्ञाकारों के निमित्त से ज्ञान में ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञाकार होते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो ज्ञान सर्व पदार्थों को नहीं जान सकेगा, वहां निश्चय से ज्ञान में होने वाले ज्ञाकार ज्ञान की ही अवस्था है। पदार्थों के ज्ञाकार कहीं ज्ञान में प्रविष्ट नहीं है। निश्चय से ऐसा होने पर भी व्यवहार से देखा जाए तो ज्ञान में होने वाले ज्ञाकारों के कारण पदार्थों के ज्ञाकार है और उनके कारण पदार्थ है। इस प्रकार परंपरा से अभी पहला प्रश्न हो गया, वह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
ज्ञान पदार्थों को जानता है और पदार्थ ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, इन दोनों बातों में क्या अंतर?
बड़ा बड़ा भारी फेर है उसमें। मैं ज्ञेय को जानता हूं एक बार, और ज्ञेय मेरा ज्ञान में जड़ जाता है, उसमें बहुत तफावत है। ज्ञेय को मैं जानता हूं तो लक्ष्य ज्ञेय पर चले जाता है, यानी ज्ञेय मेरा ज्ञान में जलकता है तो ज्ञान आत्मा पर आ जाता है, पर का लक्ष्य नहीं रहता है।
बस बात तो दोनों में एक ही है ना, ज्ञान में पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ता है, इसी को जानना कह दें या इसी को ज्ञेयों का प्रतिभा होता है ऐसा कह दें।
पर जानता है किसको? ज्ञेय को के ज्ञाकार ज्ञान को के ज्ञानकार ज्ञान को? ज्ञान किसको जानता है? इसको ज्ञान जानता है कि वो प्रतिभा उसमें हुआ ऐसा ज्ञाकार ज्ञान को जानता है। प्रतिभा इंद्रिय ज्ञान से अलावा एक अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है साधक को, वो ज्ञान के ताकत कोई अपूर्व है, वो ही ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, यही है भैया। बोला
अतीन्द्रिय ज्ञान अपनी ज्ञान परवार को जानता है,
जानता है,
और इंद्रिय ज्ञान पर को जानता है।
हाँ ऐसा है, ऐसा आया है, ऐसा कहाँ आया है?
फरमाइए
के एक अमित गति आचार्य का योगसार है, उसमें लास्ट चुली का अधिकार है, और चुली का अधिकार में आचार्य भगवान ने लिखा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि पदार्थ दो है, देह और आत्मा, पदार्थ दो है, दो को जानने वाला दो प्रकार का ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान देह देह को जानता है, स्वसंवेदन ज्ञान आत्मा को जानता है, ऐसा दो बागला पार दिया उसने। वो दो की दो बात निश्चित है, तो निश्चय की बात पहले समझनी चाहिए, उसमें भेद ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान पर को जानता है, अतीन्द्रिय ज्ञान सबको जानता है, ऐसा वहां लिखा है, सात शब्द में लिखा है। अमित गति आचार्य का योगसार है, कल लाना इधर पपोरे, पपोरे रखना योगसार अमित गति आचार्य का, इधर होगा होगा भी होगा, अमित गति आचार्य में योगसार उसमें लिखा है। और वो बात समयकार में है, वो बात समयकार में भी है। समयकार तो इधर आ गया है, इधर आ गए समयकार, हाँ ये समयकार है, उस पर करता है ना। अच्छा, कर्ण इंद्री शब्द को जानती है, और शब्द ऐसा नहीं कहता है कि तू हमको जान,
बराबर,
और आत्मा अपने जानने को छोड़कर वो शब्द को जानने को जाता ही नहीं है। दस कहता है, दस
रूप नहीं कहता, शब्द नहीं कहता,
उसमें मार्मिक तो बात है, वो तो नहीं कहता है कि तू सुन, वो तो नहीं कहता है। और उसको जानने वाला कर्ण इंद्रिया भी है, पांच इंद्री समझे, रस इंद्रिया भी, उसको जानने वाला वो है, मगर वो जानने वाला है, आत्मा भी उसको जानने में जावे ऐसा नहीं है। ये जो स्वपर प्रकाशक का अंदर में थोड़ा व्यवहार का ज्यादा पक्ष होने तो वो ख्याल में नहीं आवे। निश्चय की बात में ना समझनी चाहिए, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है, मगर निश्चय की बात सुनना चाहिए, पहला समझना चाहिए। दस गाथा है, मैं मूल गाथा देखू आपको बताऊं, क्योंकि थोड़ा दिन है ना तो मूल मूल बात के देने से सबको ख्याल में आ जावे। हाँ हाँ, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान माना है, अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है, ये है। मोह राजा ने ज्ञान रखा, मोह जी ने मान लिया, ज्ञान ही नहीं मानता है। तीन सौ तोतेर गाथा है, 373 से 382 गाथा है। समय सारे ने 373 से निकालो ने, हिंदी है ना, 373 से 382 दस गाथा है। समय सार में माल भरा है, सब समय सार में से निकला है, मूल तो समय सार है। जिनेंद्र भगवान का मार्ग सुरक्षित हो गया समय सार से, बहुत आचार्य ने रखा है सुरक्षित, मुख्य रूप से समय सार की प्रधानता है ना अभी। अच्छा, हाँ हिंदी आगे से बराबर देखो, मैं तीसरी गाथा पढ़ता हूं, 1 2 3। अशुभ अथवा शुभ शब्द तुझ में तुझसे यह नहीं कहता है कि तू मुझे सुन, शब्द और आत्मा भी, वो बात मेन है, आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर श्रोत इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को, शब्द कहां तक आता है, श्रोत इंद्रिय तक आता है, अतिंद्रिय तक पहुंचता ही नहीं है, नोट अलाउ। श्रोत इंद्रियों के विषय में आए हुए शब्द को ग्रहण करने को यानी जानने को नहीं जाता। शब्द आया तो श्रोत इंद्रिय ने जान लिया, पकड़ लिया। तो आचार्य भगवान कहते हैं, फरमाते हैं कि ऐसी स्थिति बाहर में है, शब्द भी है, शब्द को प्रसिद्ध करने वाली श्रोत इंद्रिय भी है, मतलब भगवान जो आत्मा है अपने जानता जानता प्रणमे छे, अपने जानवर पे जे प्रणमे छे, एक पोता ने जानवानो छोड़ी ने एक श्रोत इंद्रिय ना विषय में ग्रहवा जानवा जतो ज नथी, ऐसा वेद ज्ञान बताया है। बढ़िया गाथा है, दस गाथा है।
अनुभूति के संबंध में एक प्रश्न है, अनुभूति करने के लिए ज्ञान की पर्याय को द्रव्य के साथ कथनचित अभेद होने की क्या आवश्यकता है?
अभेद न हो तो आनंद ही नहीं है, अभेद नहीं हो तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, सर्वथा भिन्न नहीं है। ज्ञायक और अज्ञायक के आश्रय ही होने वाली अतिंद्रिय ज्ञान की पर्याय कथनचित अभिन्न है, जो अभिन्न हो तो सम्यक दर्शन नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, आनंद नहीं आता है। दृष्टि अपेक्षा है सर्वथा भिन्न, ज्ञान अपेक्षा से कथनचित अभिन्न कथनचित भिन्न। अनुभूति पोते पर्याय नहीं है, अभी आत्मा हो गई
बराबर,
अभेद होने से अभेद नहीं से अभेद द्रव्यार्थिक नहीं से देखो तो अनुभूति आत्मा ही है, पर्याय नहीं है, तो पर्याय क्या त्रिकाली हो जाती, पर्याय आत्मा हो जाती है, बस पर्याय आत्मा हो जाती है।
जैसा आत्मा
प्रिया और द्रव्य का भेद होने पर अभेद ये के माध्यम से देखो तो द्रव्य और पर्याय का भेद दिखाई देता। अभेद में पर्याय का भेद, अभेद ज्ञेय में पर्याय का भेद दिखाई नहीं देता है, अभेद ज्ञेय में गुण भेद दिखाई नहीं देता है। क्या कहा
फिर से?
अभेद ज्ञेय में जो ज्ञेय है ज्ञान का विषय ठिकान द्रव्य, वो अभेद ज्ञेय में गुण भेद दिखाई नहीं देता है। और जो ज्ञान हुआ ज्ञेय का ज्ञाता हो गया तो गुण हुआ द्रव्य पर्याय से अनन्य एक रूप हुआ तो ओ गुण हुआ तो ओ गुण में पर्याय का भेद दिखाई देता नहीं। भेद तो है मगर भेद दिखाई देता नहीं है, ऐसी बात है।
गुण में पर्याय का भेद दिखाई नहीं देता और गुण में गुण भेद दिखाई नहीं देता,
नहीं देता। इसका नाम निर्विकल्प अनुभव है।
बराबर
गुण भेद भी है मगर दिखाई देता नहीं है। पर्याय देता है उत्पाद उत्पाद है ध्रुव तो ध्रुव है।
बराबर
उत्पाद ध्रुव नहीं बन जाती है।
ये ध्येय पूर्वक ज्ञेय होता है क्या इसका ये मतलब है कि पहले ध्येय होता है पीछे ज्ञेय होता है?
एक समय में ध्येय होता है और एक ही समय में ज्ञेय हो जाता है, काल भेद नहीं है।
तो ध्येय पूर्वक ऐसा क्यों बोलते हैं? ध्येय के साथ में ज्ञेय होता है
नहीं, ध्येय पूर्वक क्यों होता है ज्ञेय? उसमें मन है आत्मा का आश्रय से समय दर्शनान चरित्र का निर्विकारी परिणाम प्रकट होता है। वो तो ज्ञेय तो फल है, यही तो फल है। मूल कारण तो ध्येय है, ध्येय का आश्रय से ज्ञान होता है तो ध्येय ज्ञान और ज्ञाता अभेद हो जाता है। कथन चित अभेद।
एक भाई पूछते हैं दृष्टि के विषय में पर्याय का निषेध करने पर भी हमें पर्याय की महिमा क्यों आती?
सचमुच निषेध नहीं आया,
इसका क्या अर्थ है?
पर्याय का प्रश्न का किया ने पर्याय का निषेध करने पर भी क्या शब्द आया?
हाँ जी पर्याय का निषेध करने पर भी
वर्मा पर्याय की महिमा आती है, इसका अर्थ महिमा पर्याय की है, द्रव्य की महिमा आई
नहीं। द्रव्य की महिमा नहीं आई इसलिए पर्याय की महिमा आती
आती है, बस पर्याय जट हो गया।
तो द्रव्य की महिमा कैसे आ गई?
कैसे आ रहा? अपना जो परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ।
हाँ जी
मैं मन मोक्ष से रही हूँ, आज तक आठ कर्म मेरे बांधा ही नहीं है पूर्व में, आदि बंधनीय कर्म अबंध हूं मैं तो मुक्त हूं, ऐसे ऐसे बहुत शब्दों शास्त्र में आता है। तो वो आत्मा का जैसा स्वरूप है जीव तत्व का ऐसा स्वरूप ख्याल मान लेने से महिमा आता है कि मैं आनंद की मूर्ति हूं, आनंद भरा है मेरे में, दुख मेरे में है नहीं, दुख पर्याय में हो तो हो मगर मेरे में नहीं, ऐसा द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान करने से द्रव्य स्वभाव की अधिकता आती है, पर्याय की गौरता हो जाती है, गौर का लक्ष्य छूट जाता है, द्रव्य का लक्ष्य आ जाता है तो अनुभूति हो जाती है। पर्याय नहीं है ऐसा नहीं, पर्याय गौर करके उसका लक्ष्य छोड़ देना बस।
अभी थोड़ी देर पहले ये बात आई थी कि अतिंद्रिय ज्ञान आत्मा को जानता है और इंद्रिय ज्ञान पर को जानता है। हम सबके पास तो इंद्रिय ज्ञान है, अतिंद्रिय ज्ञान तो है नहीं, तो फिर हम आत्मा को कैसे जानेंगे?
अतिंद्रिय ज्ञान प्रकट करना,
वो आत्मा को जानने पर प्रकट होगा
नहीं, इंद्रिय ज्ञान का निषेध करते ही अतिंद्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान का निषेध करते ही मैं तो अतिंद्रिय ज्ञान मई भगवान आत्मा हूं, इंद्रिय ज्ञान कर्ता का कर्म नहीं है, ज्ञान का ये भी नहीं है, मेरे में नास्ती है, द्रव्य में तो नास्ती है मगर अतिंद्रिय ज्ञान जो प्रकट अभी होगा उसमें भी उसकी नास्ती रहेगी, अंदर नहीं आएगी। ऐसा भेद ज्ञान का विचार करने से एक नया अतिंद्रिय ज्ञान अनुभूति के काल में प्रकट हो जाता है।
सर इंद्रिय ज्ञान का निषेध इंद्रिय ज्ञान खुद करेगा कि अतिंद्रिय ज्ञान आकर इंद्रिय ज्ञान का निषेध?
नहीं, पहले सर्व विकल्प में मानसिक ज्ञान में विधि निषेध का विकल्प आता है।
बराबर
वो मानसिक ज्ञान में विधि निषेध का विकल्प आता है, बाद में विकल्प छूट जाता है, અને સાક્ષાત વિધિ નિષેધ કા રાગ દ્વેષ નહીં હોતા હૈ, મધ્યસ્થ હો જાતા હૈ, તો સહજ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રગટ હોકર આત્મા કો પ્રસ્તુત કરતા હૈ. હા, વિધિ નિષેધ ઇસકે જોર સે એકલા વાણી મેં અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમય વહાં પદાર્થ હું ઓર ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પર આશ્રિત હૈ, ઓ મેરા પરિણામ નહીં હૈ, મેરા જ્ઞાન નહીં હૈ, મેરી ચીજ નહીં હૈ, મેરી ચીજ નહીં હૈ. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન રાગ તો મેરા નહીં, પણ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ભી મેરા નહીં હૈ. મમતા છૂટ જાતી હૈ, અનુભૂતિ હો જાતી હૈ, બાદ મેં ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો રહેતા હૈ, રાગ ભી રહેતા હૈ, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ભી રહેતા હૈ, મગર સ્વામીપણા છૂટ જાતા હૈ, સ્વામીપણા છૂટ જાતા હૈ, એકત્વ બુદ્ધિ છૂટ જાતી હૈ. ઇતના ફાયદા ચોથા ગુપ્તાને હોતા હૈ. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ભી રહેતા હૈ, રાગ ભી રહેતા હૈ, થોડા નહીં રહેતા, એસા નહીં હૈ. રાગ રાગ મેં હૈ, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઇન્દ્રિય જ્ઞાન મેં, મેં મેરે મેં હું, બાગલા પડ જાતા હૈ ભેદ જ્ઞાન કે અંદર.
ये इंद्रिय ज्ञान और राग ये दोनों एक जैसे ही है क्या?
एक अपेक्षा से एक जैसा है, एक अपेक्षा से एक जैसा है.
कौन सी अपेक्षा?
क्योंकि आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करता है राग, और इंद्रिय ज्ञान भी आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करता है, इसलिए एक जैसा है. तो भी इंद्रिय ज्ञान में जानने की क्रिया होती है, और मन वाला प्राणी सविकल वेद ज्ञान करता है, इतना उसका कार्य है. आत्मा तक बोले जाता है, आत्मा में प्रवेश नहीं करता है मानसिक ज्ञान.
इसको जरा विशेष खुला
रंगनी पचिंद्री जीव सम्यक दर्शन के पात्र होता है.
हाँ जी.
और संगनी सम्यक दर्शन प्राप्त होता नहीं है. तो संगनी जी हुआ अनंत अनंत कल्प काल चले जाए समझे, तभी मनुष्य को मिलता है. और संगनी पचिंद्री पुणा मिला, मन वाली प्राणी मिला, मन हो गया. तो मन के अंदर अपना प्रयोजन भूत तत्व के अंदर लगा देना, मन के वेद ज्ञान के अंदर, तो ये जो मन है वो मन की एक शक्ति अनुमान है. अनुमान अनुमान में निर्णय की शक्ति है, अनुभव नहीं करता है मन, मगर निर्णय की शक्ति मन में आती है. कैसा आता है भाव मन में निर्णय? जो अनुभव आया आत्मा को,
देखना भाई कौन है रिश्ता,
उससे ऐसा निर्णय हो जाता है. भाई कुमार जी
फरमाइए सर.
के जाने शुद्धात्मा आत्मा गया,
इंद्रिय ज्ञान नहीं,
इंद्रिय ज्ञान नहीं, मानसिक ज्ञान लेवा, पांच ज्ञान की ताकत नहीं है. मन मन वो इंद्रिय ज्ञान है, भाव मन है.
अच्छा.
मगर उसके अंदर ऐसे सविकल्प भेद ज्ञान की शक्ति है. सविकल्प भेद ज्ञान भाव मन में होता है. विनाशिक होने पर भी उपाधि, ऐसा लिखा है करोष्टिका में, है तो विनाशिक.
हाँ.
तो भी प्राथमिक भूमिका में उसको मन द्वारा, भाव मन द्वारा स्व पर का विभाग स्पष्ट रूप से भाता है कि ये ज्ञाय की हूँ मैं, करता नहीं हूँ, पर का ज्ञाता नहीं हूँ. पूनम भाई से ठीक. इसका महिमा है तो आत्मा का महिमा. ये काल में तो पैसा का लोभ बहुत
बढ़ गया,
बहुत बढ़ अगन लग गई, अगन एक ईर्ष्या की अगन भी लग गई है. ऐसा देवलाली में मैंने शास्त्र का आधार करके देखा है, बोला था कि मुमुक्षु मुमुक्षु बीच में वो ईर्ष्या बहुत बढ़ती है पंचम काल में, ऐसा बताया था. मत्सर मत्सर शब्द आया ईर्ष्या. गुणभद्र आचार्य के कोई ऐसा वो पुस्तक एक 2000 का निकला है चिंतामणि, परमागम चिंतामणि, उसमें आया, उसमें मैंने बताया था. मुमुक्षु मुमुक्षु बत में एक दूसरे का काटता है. हाँ हाँ, क्या ख्याल आ गया.
तो ये बात आचार्य को पहले से मालूम थी साहब?
पहले से मालूम थी, उसके ज्ञान में सब आ गया.
मतलब जो कुछ हो रहा है सब क्रमबद्ध नहीं हो रहा है?
क्रमबद्ध हो रहा है, क्रमगत का ज्ञान होने होता है. ज्ञान तो होता है, तो ज्ञान होता है तो क्या अक्रम होता है? क्रमबद्ध जो होने वाला है उसका ज्ञान हो जाता है. पर्याय सब क्रमबद्धी है. क्रमबद्ध का अर्थ है आत्मा करता है. क्रमबद्ध का अर्थ क्या है प्रयोजन?
वाह.
के पर्याय होने योग होता है, मैं करने वाला
नहीं,
नहीं हो तो दृष्टि द्रव्य पर आ जाते हैं, ज्ञाता बन जाता है साक्षात. क्रमबद्ध का फल वितरण का है.
क्रमगत के संबंध में एक प्रश्न है कि सिद्ध भगवान तीन लोक तीन काल की प्रत्येक पर्याय को युगपत जानते हैं,
जानते हैं,
तो उनके क्रमबद्ध बना कैसे हुआ? पर्याय तो क्रमबद्ध होती है, वो तो एक साथ जान लेते हैं, तो उनको क्रमबद्ध कैसे लागू पड़ेगा?
पर जानना अलग है, निवास क्रमबद्ध पर्याय होती है तो अलग है, पर्याय तो क्रमबद्ध ही होते हैं, ऐसा होने होता है, ऐसा ज्ञान में पहले से आ जाता है, तो ज्ञान में आ जाता है तो क्या क्रम टूट जाता है? क्रम टूटने वाला नहीं है, क्रमबद्ध ही पर्याय है, उसमें फर्क नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने लगाया क्रमबद्ध का पुस्तक बराबर है, गुरुदेव ने बहुत प्रशंसा किया
की थी
डॉक्टर साहब की, ऐसा कहा था कि उसका उगार बहुत है, और वहां तक की कहा था कि वो तत्व तो प्रचार करेगा, और डॉक्टर साहब ने भी प्रतिज्ञा लिया था उसके सामने कि जिंदगी भर में तत्व तो प्रचार करूंगा।
प्रश्न तो यह है, सिद्ध भगवान की पर्याय भी क्रमबद्ध होती है क्या?
हाँ, सब जीव की जड़ और चेतन सबके पर्याय क्रमबद्ध होती है। इसका अर्थ क्या है कि द्रव्य पर्याय का अर्थ करने वाला नहीं है, इसमें से वो निकालना
बराबर
स्वच्छंद की बात नहीं है, स्वभाव की बात है। अभी
एक भाई पूछते हैं कि हम पहली बार शिविर में आए हैं, हमें सब कुछ नया नया लगता है, हमें कहां से शुरुआत करना चाहिए?
प्रथम आत्मा को जानना, वहां से शुरुआत होती है। वस्तु है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, जैसे ये है तो आत्मा भी एक वस्तु है कि नहीं, तो वस्तु है तो वस्तु को प्रसिद्ध करने वाला उपयोग भी है कि नहीं, उपयोग प्रसिद्ध होता है तो उपयोग में जानना जानने में आता है, ऐसा वहां से शुरुआत होती है। प्रथम आत्मा ने जानो, क्या कहा?
प्रथम आत्मा ने जानो,
ऐसा कहा है कुंकुंदाचार्य भगवान।
उनका तो ये आशा है कि हम स्वाध्याय करें तो कौन सी पुस्तक पहले पढ़े?
वो तो ठीक है, जिसमें शुद्ध आत्मा का स्वरूप और वेद ज्ञान की प्रधानता हो, जिसमें अकर्ता ज्ञाता की प्रधानता हो, ऐसा शास्त्र पढ़ना चाहिए। जिसमें कर्ता है, न्याय है, निमित्त है, नीतिक संबंध है, ऐसा ऐसा शुरुआत नहीं करना, नितर शून्य हो जाएगा कर्ता का। पहले दुर्गा योग का अभ्यास करना, ऐसा लिखा है टंडमल साहब ने, बोलो। पहले शुरुआत में द्रव्यान योग का अभ्यास करना, चरणान योग ने, प्रथमान योग ने, कर्णान योग ना, बाद में करना। निर्विकल ज्ञान में नहीं रहता है ज्ञानी, तो सब शास्त्र का अध्ययन करता है, चारे अनुयोग है, जिनवाणी है, मगर अध्ययन में जिंदगी चली जाए तो ऐसा नहीं करना। वेद ज्ञान करके अपने उपयोग में आत्मा को सोच लेना।
बराबर,
क्या तक है टाइम? हो जाए तो पूरा बंद कर,
दो तीन मिनट
है, 5 मिनट है, ठीक है।
एक प्रश्न आया है, मनुष्य का दैनिक जीवन और आचरण कैसा होना चाहिए?
वेद ज्ञान का निरंतर अभ्यास करता है वो आचरण है, उसमें मिथ्या तो गलता है, मिथ्या तो गलता है, इसके साथ साथ में पाप का परिणाम भी मर्यादा में आ जाता है। निर्गल प्रवृत्ति नहीं होती है, स्वच्छंदी प्रवृत्ति नहीं होती है उसकी।
वो कुछ खाने पीने की बात में कुछ फर्क पड़ता है क्या? वो आशय लगता है कृष्ण कार का,
रोटी दाल का बात खाना बस, दारू नहीं, मांस नहीं, इंडा नहीं, अभक्ष नहीं खाना बस, ये कंद नहीं खाना जिसमें अनंत जीव है, बस सादा भोजन ले लेना, रोटी दाल का बात, कब खाना भूख लगे तब खाना,
दिन में रात में
तब तब नहीं, दिन में रात में नहीं, रात्रि भोजन नहीं, दिन की बात है।
एक प्रश्न है, राग द्वेष के परिणामों का कर्ता कौन है? क्या इससे आत्मा प्रभावित होता है?
आत्मा बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, और राग द्वेष का कर्ता परिणाम का कर्ता परिणाम है, पर से कर्म कृत नहीं है, अने जीव कृत भी नहीं है, पर्याय कृत है राग, आता है कर्म की सापेक्षता से, ये पुद्गल का परिणाम है, उद्गल के साथ व्यापी व्यापक संबंध है, आत्मा के साथ व्यापी व्यापक संबंध नहीं है, ऐसा आता है वो निमित्त सापेक्ष का कथन से उद्गल का परिणाम कहा जाता है। सचमुच तो परिणाम का कर्ता परिणाम ही है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। आत्मा कर्ता हो तो करते हैं मोक्ष। अभी मैं एक दृष्टांत देता था, अब कभी कभी इज्जत नहीं गया कि सिमंदर भगवान है ने, तो इधर तेरहवा जब तीर्थंकर परमात्मा होगा ने तब उसका मोक्ष होगा, तो इधर से कर्ता बुद्धि वाला ने विनती किया समूचे मिलकर कि भगवान एक हमेरा ऐसा काम हमको सौंपता हूँ आपको कि आप मोक्ष कर दो, क्योंकि आपकी वाणी में आया है कि वो भी संसार ये तेरहवा गुणस्थान भी वो हमको सोया नहीं जाता है, अनंत वीर्य प्रकट हो गया, अच्छा काम है मोक्ष की पर्याय करो। तो वैसे जवाब आया कि तेरा प्रश्न मूर्खाई भरेला है, पर्याय का कर्ता आत्मा नहीं है, वो जानन हारे करनार नहीं है, वो क्रमबद्ध पर्याय में स्वकाल में पर्याय प्रकट होगी, आगे पीछे होती नहीं है, ऐसा है।
बनारसी राज जी ने लिखा है कर्ता परिणाम ही द्रव, तो द्रव्य को कर्ता कहते हैं, पर्याय को कर्म कहते हैं,
बराबर है।
आप कहते हैं परिणाम का कर्ता परिणाम है,
बराबर है, दो ही बात बराबर है। बनारसी दास जी ने कहा कि द्रव्य कर्ता है न परिणाम कर्म है, वो बात भी सही है कि परिणाम सो कर्ता न परिणाम सो कर्म, ऐसा कर्ता कर्म की व्याख्या एक द्रव्य के बीच में है और व्यवहार ने का कथन है, और परिणाम का कर्ता परिणाम है न द्रव्य कर्ता है वो निश्चय का कथन है। बनारसी दास ने लिखा बराबर लिखा है, कौन कई नई नु कथन छे अने शू अहीं प्रयोजन सिद्ध करवू छे, खास जिनागम नो मर्म समझवा माटे के परथी परिणाम थता नथी, पोते परिणमे छे, अपने आप परिणमता है, तो परिणमे सो कर्ता अने परिणाम सो कर्म, कर्ता कर्म एक द्रव्य में होता है, व्यवहार निका कथन है।
त्रिकाली उपादान की अपेक्षा का अंशय उपादान की
परिणमता है तो कर्ता है परिणाम सो कर्म, व्यापी व्यापक लिखा है बहुत लिखा है, मगर सचमुच परिणाम का कर्ता परिणाम है, द्रव्य अकारक है तो कर्ता नहीं है, उसमें साध्य की सिद्धि होती है, साध्य की सिद्धि होने के बाद परिणाम का एक नाम दर्शन चार रूपये आत्मा साधक, तो समय दर्शन चार का परिणाम का कर्ता भी आत्मा है, परिणमता है न मोक्ष मार्ग पे, तो मोक्ष मार्ग का कर्ता कहा जाता है, मोक्ष मार्ग अपना कर्म कार्य है ऐसा कहा जाता है, व्यवहार ने का कथन है।
परिणाम का कर्ता परिणाम है तो इसका मतलब हम तो द्रव्य है ना, तो फिर हम सम्यक दर्शन तो कर नहीं सकते,
सम्यक दर्शन का जो विषय है उसको आप जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं,
तो जानना भी तो परिणाम हुआ,
परिणाम जानता है, परिणाम अपने को जाने वो परिणाम का नाम ही सम्यक दर्शन है,
बराबर,
जो परिणाम अपने आत्मा को जाने माने उसका नाम ही सम्यक ज्ञान ने सम्यक दर्शन दिया है, परिणाम पर को जानने में रुक जावे, पर को मानने में रुक जावे वो तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है।
तो आत्मा को जानने वाला परिणाम वो अपन कर सकते हैं क्या?
कर सकते नहीं, होता है ऐसा जानता है, होता है अभिमुख हो गया परिणाम, तो कहा जाता है कि आत्मा ने पुरुषार्थ किया सम्यक दर्शन प्रगट या कह सकता है,
तो परिणाम अपने आप होगा कि हमें करना पड़ेगा?
नहीं करना नहीं पड़ेगा, त्रिकाली द्रव्य को जानो उसका नाम सम्यक दर्शन नाम है, दृष्टि आप द्रव्य पर लगाओ तो आपको आप परिणाम शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध को जो जानता है वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध जाने आत्मा ने ते शुद्ध आत्मा
नील है।
एक भाई साहब ने ये वक्त राजकोट के अंदर शिविर में ऐसा चलाया शतक कुमकुम शतक का दो तीन गाथा समझे, तो अष्टपाव में की गाथा चलाया, तो आत्मज्ञान हुआ सम्यक स्नान चरित्र का परिणाम साधक हो गया, तो भी आत्मा ही उपाधि है, आत्मा ही शरण है, आत्मा का परिणाम आत्मा को शरणभूत नहीं है,
बराबर। अभी आपके पधारने के पहले भी ये गाथा यहाँ चलती थी, अभी
चलती थी, बहुत अच्छी गाथा, हम तो खुश हो गया वहां से, जरा हमको खुशी भी हो गई, ठीक है अभी सब चलेगा, ऐसा विभाव आ गया, ऐसा विभाव
आ गया,
आ गया। वो लगता है वो तो बोलता हूँ, कोई पक्षपात नहीं, पंडित जी मेरा कोई सगा वाला नहीं है।
आपका आशीर्वाद रहेगा साहब तो बहुत लंबा चलेगा।
चलने वाला है ये सब तो पंचमाराणा छेड़ा सुधी ये गुरुदेव की वाणी निमित होती होगी सम्यक दर्शन।
ऐसा महावीर भगवान की जय। अब इसके बाद